ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन प्रस्ताव का राष्ट्रहित के मद्देनजर परिमार्जन किया जा सकता है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड का कथन। नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच 2077 फागुन 6, 7 और 8 गते को महाधिवेशन करने की हुई सहमति। आंतरिक रूप में बिजली की खपत बढ़ाने के लिए बिजली की दर घटाने की सरकार कर रही है तैयारी। और कोरोना वायरस के कारण चीन में अब तक मरने वालों की संख्या हो चुकी है 25। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आगामी चैत्र में होने वाले सगरमाथा संवाद के विषय में आज अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम के प्रतिनिधियों को जानकारी दी। परराष्ट्र मंत्रालय में आज अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम के नेपाल स्थित प्रतिनिधियों एवं नेपाल भ्रमण में रहे भारत के पत्रकारों से की गई अंतर्क्रिया कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार केवाली ने बताया कि इस संवाद कार्यक्रम में पड़ोसी देशों, दक्षिण एशिया के देशों, बिम्स्टेक एवं जलवायु परिवर्तन से प्रभावित सामुद्रिक टापू एवं पर्वतीय देशों को सहभागी होने का आमंत्रण किया है। बता दें कि सगरमाथा संवाद चैत्र 20 से 22 गति तक काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एमसीसी के प्रस्ताव को परिमार्जन किया जा सकता है। नवलपुर की दलदले में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल ने कहा कि दूसरे देशों में एमसीसी के प्रस्ताव पर सैन्य रणनीति को प्राथमिकता में रखने के कारण ये विषय विवादित है, परन्तु नेपाल में ऐसी स्थिति नहीं है। अध्यक्ष दाहाल ने बताया कि अमेरिकी दूतावास की तरफ से 10 सूत्रीय स्पष्टीकरण आया है, जिस पर राष्ट्र के हित को केंद्र बिंदु में रखकर आगे बढ़ा जाएगा। नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच 2077 फागुन 6, 7 और 8 गते महाधिवेशन करने के विषय में सहमति हुई है। सभापति शेर बहादुर देवबा के निवास में हुई बैठक में महाधिवेशन की कार्यतालिका और कार्यविधि के विषय में फैसला मार्ग 13 गते होने वाली केंद्रीय कार्य समिति की बैठक द्वारा किए जाने की सहमति हुई है। इस बात की जानकारी नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा ने दी। बागमती प्रदेश सरकार के आयोजन में आज से राजधानी हेटौड़ा में शहीद सप्ताह शुरू हुआ है। शहीद सप्ताह के आज पहले दिन बुद्ध चौक से शहीद स्मारक तक पदयात्रा निकाली गई थी। पदयात्रा में मुख्यमंत्री डोरमणि पौड़ेल समेत प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय सभा और प्रदेश सभा के सदस्यों, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सर्वसाधारण लगायत की सहभागिता थी। राष्ट्रीय युवा परिषद और नेपाल नगर पालिका संघ एवं गांव पालिका राष्ट्रीय महासंघ के बीच युवा परिचालन और नेतृत्व विकास के लिए सहकार्य करने की समझौता हुआ है। समझौता पत्र पर राष्ट्रीय युवा परिषद के कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल, नेपाल नगर पालिका संघ के अध्यक्ष अशोक ब्याजू श्रेष्ठ और गांव पालिका राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठ ने हस्ताक्षर किए। मौके पर राष्ट्रीय युवा परिषद के कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल ने बताया कि ये समझौता युवा लक्षित कार्यक्रमों का स्थानीय तहों तक प्रभावकारी रूप में क्रियान्वयन करने को लेकर केंद्रित है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं समय व्यापारिक विश्राम का।
14-15 बजारमा नयाँ कि छैन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15
मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने आज काठमांडू में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बताया कि चीन से नेपाल आए हुए छात्र का स्वास्थ्य परीक्षण करने पर उसमें कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि चीन के युवान क्षेत्र से नेपाल आए एक व्यक्ति की शुरूआती जांच कर कन्फर्मेशन के लिए रिपोर्ट को WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर हांगकांग भेजा गया था, जिसे वहां वायरस पॉजिटिव बताया गया। बयान के मुताबिक इस बारे में एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा सघन निगरानी और विस्तृत अध्ययन कर रही है। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन ने कहा कि आंतरिक विद्युत खपत को बढ़ाने के लिए विद्युत की दरों को कम किया जाएगा। आज दांग के तुलसीपुर में आयोजित एक गोष्ठी में मंत्री पुन ने बताया कि अत्यधिक विद्युत को भारत और अन्य पड़ोसी देशों में बेचा जा सकता है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए आंतरिक खपत को ही प्राथमिकता में रखा जाएगा। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय ने बताया कि दांग की तुलसीपुर स्थित टरीगांव विमानस्थल की स्तर वृद्धि के लिए बजट विनियोजन किया गया है। दांग की तुलसीपुर स्थित टरीगांव विमानस्थल का आज स्थलगत अनुगमन करते हुए मंत्री भट्टराय ने आगामी वर्षों में भी विमानस्थल विस्तार के लिए बजट विनियोजन करने की प्रतिबद्धता जताई। बता दें कि इस विमानस्थल से दांग सहित पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम, रोलपा, प्यूठान, जाजरकोट और सुर्खेत के लोग लाभान्वित हुए हैं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय महेंद्रनगर कंचनपुर की खरीदार ललिता रोकाया के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुद्दा दर्ज किया है। भीमदत्त नगर पालिका वार्ड नंबर 4 में जमीन पास करने के लिए 1,50,000 रूपये का घूस देने की पुष्टि होने के कारण उतनी ही रकम का जुर्माना पेश करने का अख्तियार ने आज विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। आज ही अख्तियार ने काठमांडू महानगर पालिका स्थित कुलेश्वर विद्युत वितरण केंद्र के कर्मचारी कृष्ण मुरारी चौधरी को 25,000 रूपये घूस देते हुए गिरफ्तार कर अनुसंधान शुरू किया है। नेपाल भ्रमणवर्ष 2020 के अवसर पर देश की 10 विमानस्थलों की साफ सफाई का ऑडिट किया जाएगा। विमानस्थल की साफ सफाई को प्रभावकारी बनाने के लिए सरोकार वाले संस्थाओं के साथ सहकार्य कर विमानस्थल की सफाई ऑडिट करने का समझौता किया गया है। इसकी जानकारी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी है। पर्यटन मंत्रालय और गैर आवासीय नेपाली संघ के बीच हुई सहमति के अनुसार 10 विमानस्थलों का स्थलगत भ्रमण करने और साफ सफाई की अवस्था का ऑडिट कर चैत्र 19 गते के अंदर मंत्रालय को प्रतिवेदन सौंपा जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस के कारण चीन में अब तक मरने वालों की संख्या 25 हो चुकी है। वहीं इस वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 830 है। चीन इस समय अपने खुबे प्रांत में जानलेवा कोरोना वायरस से जूझ रहा है। दूसरी ओर करोड़ों चीनी ल्यूनर न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं। बीजिंग और हांगकांग ने भीड़ जमा होने से रोकने के लिए कई बड़े समारोहों को रद्द कर दिया है। खुबे के वुहान और दूसरे शहरों में वायरस को फैलने से रोकने के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिसके तहत सार्वजनिक परिवहन तक पर रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को चीनी प्रशासन ने कहा कि मरने वालों का आंकड़ा 25 हो गया है, जबकि इससे 830 लोग प्रभावित हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा कि जिन मामलों की पुष्टि हो चुकी है उसमें 177 लोग गंभीर हालत में हैं, जबकि 34 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। साथ ही ऐसे 1,072 संदिग्ध मरीजों की पहचान की गई है जो इसकी चपेट में हो सकते हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15.7 और न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन प्रस्ताव का राष्ट्रहित के मद्देनजर परिमार्जन किया जा सकता है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड का कथन। नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच 2077 फागुन 6, 7 और 8 गते को महाधिवेशन करने की हुई सहमति। आंतरिक रूप में बिजली की खपत बढ़ाने के लिए बिजली की दर घटाने की सरकार कर रही है तैयारी। और कोरोना वायरस के कारण चीन में अब तक मरने वालों की संख्या हो चुकी है 25। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।